ओम शांति। अभी हम सबके बीच में राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी पिछले 45 वर्षों से मधुबन बेहद घर में आदरणीय दादियों के सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपनी बहुमुखी प्रतिभा को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आप प्यारे बाबा की धारणा मूर्त, आदर्श यज्ञ स्नेही ब्रह्मा वत्स हैं, यज्ञ रत्न हैं। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अभी तक हजारों की संख्या में गीतों को बाबा की श्रीमत प्रमाण लिखा है और उन गीतों को संगीत प्रदान करके आपने बाबा के हर आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। चाहे प्रभु मिलन का प्रोग्राम हो और चाहे विंग्स के प्रोग्राम हो, चाहे कोई सोशल सर्विस का प्रोग्राम हो, वो आपकी मधुर गीत संगीत और मधुर वाणी ग्रुप के बिना अधूरा रहता है। ऐसे यज्ञ के अनमोल रत्न हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं पर हमें मार्गदर्शन दें, प्रकाश प्रदान करें। राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। अभी आवाज नहीं आई पूरी। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष नवयुग की पूर्व अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ दिल्ली दरबार आया है, आगरा भी आया है, समस्त भारत के कोने कोने से सभी भाई बहने जो प्रभु मिलन के लिए आए हैं, उन सबको प्रभु मिलन की ईश्वरीय मिलन मंगल मिलन बनाने की उसकी भी ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगम युग की विशेषता है बधाइयों का, हर दिन नया दिन है, विशेषता संपन्न है, हर दिन उमंग उत्साह का दिन है। इसलिए सेवा में भी जो आए हैं, मधुबन में सेवा का सौभाग्य मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए भी भाई बहने जो आए हैं उनको सेवा का मेवा प्राप्त करने की भी, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इन बधाइयों के साथ साथ में आज की मुरली के अनुसार प्यारे बाबा कहते हैं अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए जिससे भी बात करें उसको बात करते सामने देखते हुए अपनी बुद्धि का योग एक मेव बाप से लगाना है, उसकी तरफ ध्यान देने वालों का। और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए भाई बहनों का, बाप के डायरेक्शन का पालन करने वालों का, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, इस बात को अच्छी तरह समझने वालों का और अपनी जांच करने वालों का कि कोई भी हमारा कर्म श्रीमत के वर खिलाफ तो नहीं है, क्या हम रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? इस बात का ध्यान रखने वालों का भोलेनाथ से निराला ये गीत भक्त बनकर नहीं ज्ञानी बनकर के सुनने और गाने वालों का अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहने वालों का ज्ञान रत्न को धारण करके औरों से कराने वालों का अपनी जांच करने वालों का कि हम ट्रस्टी कहाँ तक बने हैं और कहाँ तक हम जो है लून पानी तो नहीं बनते हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं के खिलाफ तो नहीं काम करते हैं, सबसे प्रेम से चलते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है, इस बात को अच्छी तरह से समझ करके धारण करने वालों का और आज के मुरली के वरदान के अनुसार पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वालों का, ऑलराउंडर बनने वालों का, अलर्ट रहने वालों का, स्लोगन के अनुसार समय के महत्व को सामने रखकर अपने सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करने वालों का, अव्यक्त इशारे के अनुसार आवाज से परे रहने वालों का, सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर बाप समान स्थिति का निर्माण करने वालों का, शक्तिशाली बनने वालों का और आज के इस सत्र में सन्मुख बैठे और सभी सुनने वालों को देखने वालों को भी उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयां हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, वास्तव में कहना चाहिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, अन्यथा लोग ब्राह्मण समझते हैं कि ये ब्राह्मण है बाकी इनको ये कुछ और नजर आते हैं, इसलिए हम सबको बड़ी सावधानी से कहना चाहिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं क्या है, उन पर हम सब चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है और संगम युगी ब्राह्मण जीवन तो प्राप्तियों से भरा हुआ जीवन है, ये सबसे यूनिक जीवन है, अलौकिक है, सर्व प्राप्तियों से भरा हुआ जीवन है और ये संगम युग कितना आनंदकारी है। संगम के सुख के आगे, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है, ओ बाबा दिल ये कहता अनुभव हमें हुआ है, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता, भगवान हमको बेहद दिल तख्त पर बिठाता, इसी युग में हमने पाया है प्रभु के दिल का आसन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, श्रृंगार शक्तियों से प्रभु ने अभी किया है, ओ बाबा दिल है कहता अनुभव हमें हुआ है, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, सतयुग का सुख भी क्या है। बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाते, नजरों से हो उठाते पलकों में है सुलाते, इसी युग में हमने पाया है प्रभु का दुलार प्यारा, ऐसा कहां मिलेगा वहां देवताओं द्वारा, ऐसा कहां मिलेगा वहां देवताओं द्वारा, आंचल में सारा जीवन भगवान के जिया है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। और क्या है अतींद्रिय सुख, क्या है अतींद्रिय सुख, पूछो हम गोप गोपियों से, और मजा क्या प्रभु मिलन में, हम राजयोगियों से, मजा क्या प्रभु मिलन में हम राजयोगियों से। नजरें रहे ये हम पर हरदम रहे नजारा, नजरें रहे ये हम पर हरदम रहे नजारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा। बेहद का प्यार प्रभु ने हमको अभी दिया है, ओ बाबा दिल है कहता अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। संगम युग सभी युगों में सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है, हीरे तुल्य जीवन है। ये ब्राह्मण जीवन सबसे न्यारा और निराला है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन है, विशेषताओं से हम सब भरा है। देखते हैं आज की इस क्लास में हम सब जानना चाहेंगे कि जो इस संगम युग की विशेषता है उसके अनुसार हमको संगम युगी जीवन मिला है, तो क्या संगम युग के उन विशेषताओं को हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं? क्या संगम का पल पल सफल हो रहा है? क्या संगम युग हमारा उलझनों में, व्यर्थ की बातों में और तेरा मेरा में, परचिंतन में कहीं और तो नहीं जा रहा है? क्या संगम युग का ये जीवन, क्या संगम युगी ब्राह्मण जीवन उन विशेषताओं से संपन्न है जिसमें अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें प्रभु मिलन है, जिसमें विदेही स्थिति का अनुभव है, जिसमें आत्मविमानी हम बनते हैं, जिसमें पवित्रता का संपूर्ण सुख मिलता है, पुरुषार्थ का भी आनंद मिलता है और प्रलब्ध से तो हम भरे ही होते हैं। इसी क्लास में हम ये भी सुनेंगे कि संगम युग की उन विशेषताओं को, ब्राह्मण जीवन को हम धारण करके क्या परमात्म मिलन का आनंद ले रहे हैं, क्या हम निरंतर योगी बन रहे हैं, क्या संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हम संपूर्ण पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, क्या ईश्वरीय धारणा नियम श्रीमत और मर्यादाएं हमारे जीवन में उतर रही। आज इस क्लास में हम सब सुनेंगे। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, आज की इस क्लास में नया कौन है जो पहली बार आए हैं मधुबन में? पहली बार जो आए हैं जरा हाथ उठा ले, पहली बार, प्रथम बार, लंबा हाथ जरा उठाए, लंबा हाथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वन थर्ड। एक बार अभिनंदन कर ले आप सबको नए जन्म की, नए युग की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की पहली विशेषता है और वो है योगी पवित्र जीवन। पवित्रता का वरदान योगी बनने के साथ साथ हम सबको जन्मते ही मिल जाता है और ये पवित्रता इतनी सरल हो जाती है, संसार जिसको असंभव कहता है वो हमारे लिए संभव हो जाता है। ईश्वरीय जीवन में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनुभव मिलने के बाद, यज्ञ इतिहास को जानने के बाद, हमारे आदि रत्नों का त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा और उनका ईश्वरीय मिलन में मगन जीवन देखकर, उनका अनुभव सुनकर के अब हम सबको सहज हो जाता है कि हम पवित्रता की धारणा को सहज अनुभव करें। लेकिन यदि लगातार पुरुषार्थी जीवन में आगे चलते हुए पवित्रता के संबंध में कठिनाई होती है, हमारे योगी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता सहजता से अनुभव नहीं हो रही है, हम उधेड़ बुन में होते हैं, कभी दृष्टि जाती है, कभी वृत्ति जाती है, कभी गंदे स्वप्न आते हैं, कभी हमसे छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं, और किसी से भी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हम ब्राह्मण जीवन में प्रवेश नहीं किए। ब्राह्मण जीवन कहते किसको है, अभी उसको समझा भी नहीं है। इसलिए पवित्रता, जिसको हम ब्रह्मचर्य भी कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही बाबा की तरफ से ये हम सबको इसकी परिभाषा मिल जाती है कि ईश्वरीय जीवन ब्राह्मण जीवन की परिभाषा है संपूर्ण पवित्र जीवन। पवित्रता का अर्थ मात्र ब्रह्मचर्य ही नहीं बल्कि ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्माचारी बनना है, हम ब्रह्माचारी बनते जाते हैं, ब्रह्मचर्य इजी होता जाता है, अपने आप समा जाता है। ब्रह्मचर्य तो पहला ही कदम है, इसके बाद तो हम और आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हम सब मुख वंशावली बनने के साथ साथ मरजीवा जीवन में जन्म लिए। हमारा जीवन ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, द्विज माना दो बार जन्म लेने वाले। एक तो कुख से जन्म हुआ है, कोक से, दूसरा मुख से जन्म हुआ है, जो हम सब ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण बनने के बाद ये पांच विशेषताएं हम सबको सहजता से जीवन में आ जाना चाहिए। ब्राह्मण कौन? पहली बात, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। और इसके लिए बाबा तमाम युक्तियां बताते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए जितना आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हो, आत्मिक चिंतन, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मदर्शन करें, आत्मन्वेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मपरीक्षण करें, आत्मसंशोधन करें, आत्मपरिमार्जन करें, आत्मपरिवर्तन करें। ये आत्मा की दुनिया बड़ी गजब की है। आत्मविमानी बनने के लिए आप अलर्ट बैठ जाएं, सीधा बैठ जाएं, आंखों को कम करें एक पल के लिए, अनुभव करें कि मैं मस्तक पर चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ज्ञान योग के पंख मिले, उमंग उत्साह के रंग मिले, मुझे सत के संग मिले, सद्गुणों से गया संवारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। लेके चलना सुख धाम है, सुख देना ही काम है, मेरा सुखदेव नाम है, सारे जहां का मैं सहारा हूं, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, परम धाम से पधारा हूं, फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, सद्गुणों से गया संवारा हूं, सारे जहां का मैं सहारा हूं, सारे जहां का मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। अनुभूतियों के इन पलों को प्रतिदिन हम अवश्य ध्यान में रखकर अभ्यास करें, इसका पुरुषार्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे जरूरी है। अगर इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, यदि आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक भान का, आत्मभानी बनने का, विदेही बनने का, आत्मनिरीक्षण का, आत्म संशोधन करने का, आत्मदर्शन करने का यदि समय नहीं है हमारे पास, तो समझ लीजिए हमने केवल नाम लिखा रखा है कि हम स्कूल में जाते हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, ड्रेस चेंज कर लिया है, बैज पहन लिया है, लेकिन अभी हम ब्राह्मण बने नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब से, ये क्लास से, कि आप प्रतिदिन एक घंटा समय आत्मचिंतन के अभ्यास में जरूर निकालें। बड़ा प्रिय विषय है, मेरा अपना अनुभव बड़ा निराला है। 86 के करीब ओम शांति भवन बना था, मेरी बड़ी लगन थी कि मैं जो सुन रहा हूं, जो कर रहा हूं, किसी को दिखा नहीं रहा हूं, इसमें अंतर्मुखी बनकर मैं स्वयं पहले अनुभव करूं, तब मैं औरों को सुनाऊं। इसके लिए मैंने संकल्प लिया कि मुझे कुछ करना जरूर है। किचन में सेवा करते थे, समय निकाल करके अपनी आदरणीय भोली दादी रहती थी, भोजन बनाते थे। दादी जी से कहा, दादी मुझे एक दिन का अवसर चाहिए, अवकाश चाहिए, मैं भट्टी के लिए जा रहा हूं। कहा कहां? कहा दूर नहीं, ओम शांति भवन में, पांडव भवन में रहता हूं। तो कहा ओम शांति भवन में, ओम शांति भवन तब पहले खाली खाली था। मैं ऊपर गया ऋषि गुफा में, वहां पर एक दिन सारा दिन लगाया कि रोज रोज तो गड्ढा खोद रहा हूं, पानी तो निकल ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगना है, करना है, और उस कोशिश में लगा सारा दिन मैंने किया, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। मैं दूसरे दिन फिर कहा, दादी एक दिन की छुट्टी और चाहिए, तो दादी ने सहज छुट्टी दे दी। दूसरे दिन भी किया, दूसरे दिन शाम तक बड़ी अच्छी अनुभूति होने लगी, लेकिन लगा अभी भी कम है। तो फिर तीसरे दिन और एक दिन की छुट्टी ले ली, लेकिन यकीन मानिए तीसरे दिन तक ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे लगा कि मैं इस शरीर में अवतरित होकर के मैं आया हूं। या लगा कि ये कहीं शरीर सूक्ष्म शरीर तो नहीं है। ये ऐसे देखता हूं 2:30 बजे का समय और देखता हूं तो लगता है नहीं नहीं ये तो स्थूल शरीर है, मैं तो इसमें प्रवेश किया हूं, मैं स्थूल शरीर में ही हूं, लेकिन कुछ पता नहीं कि मैं कब उठा, कब फ्रेश हुआ, कब ओम शांति भवन में फिर भट्टी में लग गया। और उस 3 दिन की योग तपस्या और आत्मचिंतन, आत्म मंथन का जो अभ्यास रहा, वो 1 हफ्ते तक उसका नशा उतरे ही नहीं। मैं जब देखूं, ये देखूं, ये सबको देखूं, तो आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा देखने की धुन लग गई। और आज तक भी वो दिन याद करता हूं कि जो दिन लग गए थे, इतना लगता जरूर है कि अगर अनुभव करना है तो ऐसा अनुभव होना चाहिए, उसका रस तो मिल गया है, लेकिन उसको निरंतर करने की दिशा में प्रगतिवान है, आगे बढ़ रहे हैं, गतिमान है, और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में जरूर सफल होऊंगा, क्योंकि उसका रसास्वादन तो मिल गया। इसलिए आप सब भी अपनी दिनचर्या में, अपने जीवनचर्या में कोई कभी न कभी एक दिन समय ऐसे कम से कम जरूर निकालें कि एकांत में बैठ करके इसके लिए धुन लगा दें, क्योंकि ये तपस्या दुनिया से निराली है। हम पुरुषार्थ में एकाकी हैं, भले भीड़ में है, लेकिन पुरुषार्थ करने में भी हमको हमारा ही पुरुषार्थ काम में आएगा, हमको ही उसका फल मिलेगा, और हमको ही करके रहना है। इसलिए निश्चित रूप से ईश्वरीय जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अगर उनकी विशेषताओं का अनुपान करना है और उनकी विशेषताओं का अनुभव करना है तो इस अभ्यास में बहुत आगे बढ़ना है। तो प्रथम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, अमृत वेला ईश्वरीय जीवन का ये पहला चैप्टर है जिसको बाबा बहुत ही महत्व देते हैं। अपने पास अमृत वेला की किताब भी बनी है जिसमें बाबा के महावाक्यों का कि अमृत वेले ही अमरनाथ बाप अमृत पान कराने के लिए, अमर बनाने के लिए आप बच्चों के लिए ही आते हैं, आप बच्चों के लिए ही रहते हैं, वो अपॉइंटमेंट हमारा गॉड के पास, गॉड के साथ है, उस समय पर हम जो भी चाहें सब कर सकते हैं। और हमारे जितने भी वरिष्ठ दादियां रहीं, दादा रहे, मुझे पूरा याद है कि दीदी मनमोहनी जी सिरोही से आई, तब की बात है, ये 82 के पास लगभग तब की बात है कि दीदी मनमोहनी जी रात को 11 बजे के बाद आई और मैं जा रहा था और जब लौट के सवेरे मैं देखता हूँ 4 बजे के योग में बैठ रहा हूँ, उसके पहले मैंने देखा कि दीदी एक साइड में बैठी है, दीदी मनमोहनी जी, और एक साइड में विश्वरतन दादा बैठे। तब से ये पता लगा कि यदि ईश्वरीय जीवन और मधुबन निवासी बन गए तो मधुबन की दिनचर्या हमारी अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। और उस दिन से संकल्प लिया कि मुझे कभी भी मधुबन निवासी बनने के बाद मधुबन की दिनचर्या के अनुसार ही चलना है, कभी अमृत वेला मिस नहीं करना है। और इस लगन के साथ लगे हुए हैं उस पुरुषार्थ में आज भी आपके सामने बैठते हैं। 45 वर्ष हो गए, ये बाबा की देन है, वरदान है, आप अभिनंदन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये साधारण सी बात तो नहीं है, लेकिन अगर मन में आपने ठान लिया और बाबा को अपने सौंप दिया तो उन तमाम खूबियों से, उन तमाम विशेषताओं से वो नवाज सकता है, नवाज देता है, जो आपकी बहुत जरूरत है जिसकी। आप सब भी, जो भी भाई बहने यहाँ सुन रहे हैं, इस क्लास से एक संकल्प ले कि संगम युग के जितना भी दिन शेष है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए दिन शेष ना रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये संगम के जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें आज से ले संकल्प ले। संकल्प लेंगे सभी? संकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे तो हाथ उठाएं, सभी साथ में संकल्प लेंगे, हाँ, लंबा हाथ उठाएं, ढीला ढीला नहीं, फुल पुरुषार्थ वाला, पूरी दृढ़ता के साथ लगन, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता का दारोमदार जो आधार है वो है आपकी दृढ़ता। निश्चय करें, बहुत अच्छा, बधाइयां। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला तो आज बिक्की मुरली में था, 12 बजे के बाद हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल टाइम है वो बाबा ने कहा है कि कम से कम 4 से 4:45 बजे तक जो हमारा निश्चित समय है उस चीज को बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आप सब संकल्प लें कि आज से 4 से 4:45 बजे तक समय, इस समय बाबा की मदद है, प्रकृति का भी सहयोग होता है और ईश्वरीय परिवार के वाइब्रेशंस भी काम में आते हैं, और चूंकि महावाक्य श्रीमत पर आप चलेंगे तो बाबा की भी मदद मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी, पुरुषार्थ में उन्नति होगी और आप आनंद से भर जाएंगे। इसलिए बाबा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो श्रीमत है इसको अपने जीवन में लाने के लिए हम सब आज संकल्प करते हैं। अगर आपने संकल्प लिया है तो अपने करतल ध्वनि से अपने संकल्प को और दृढ़ता प्रदान कीजिए। कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ता का बल चाहिए, और जब तक वो पक्का नहीं होता है हमारे जीवन में उतरता नहीं है। मैं भी जब कभी भी संकल्प में थोड़ी भी ढिलाई होती है तो मेरे पास तो इतने ढेर सारे गीत हैं कि उनको मैं याद कर लेता हूं। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो बार बार, आज भी मैंने एक दो जगह दोहराया, एक उसमें से है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही प्रखर चमकता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम शिव की संताने हैं, हम शिव की संताने हैं, क्यों सोचे मार्ग सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। ऐसे ऐसे चीजें जो बहुत काम आती हैं, दृढ़ता आ जाती है, मन में मजबूती आ जाती है। अपने आप को दृढ़ता के संकल्प से मजबूत रखने के लिए रोज सवेरे उठते ही एक संकल्प, प्रबल संकल्प सोमान का ले लें, सारे दिन उसका मनन करें। कुछ और नहीं, एक सरल सा अभ्यास कि मैं शिव शक्ति हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इसका अभ्यास करें और दिन भर में लक्ष्य बनाएं कि कम से कम 25 बार 30 बार तो करना ही चाहिए। अगर ये संकल्प ले लिया तो आप देखेंगे आपकी दिनचर्या में आपका सोमान इतना बढ़ जाएगा कि आपके जो चलते फिरते उठते बैठते छोटी छोटी जो शिकायतें करते, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो ऐसे हूं, मेरा घर ऐसा है, मेरा पड़ोस ऐसा है, मेरे पास ये समस्याएं, सारी उन समस्याओं पर विराम ऐसे लगेगा जैसे कि अब भाई ही नहीं। निश्चित रूप से देखें, एक दिन करके देखें, ज्यादा नहीं, आज से लेकर के अभी क्लास से लेकर के रात तक भी अगर आपने 20 बार कर लिया तो आप देखेंगे व्यर्थ संकल्पों से आप मुक्त रहेंगे, आपके मनोबल में अच्छी वृद्धि होगी और आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। सुमान को जरूर कायम रखना चाहिए, बिना सुमान के इस पुरुषार्थ के पथ पर निरंतर सफलता संदिग्ध रहती है। इसलिए आवश्यक है कि आए हम सब पुरुषार्थ की लगन में मगन हो जाए। तो सवेरे उठे, केवल उठना ही नहीं, अलर्ट बैठे, जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ सकते हैं, देख रहे होंगे पांव पे पांव रखते हैं, ये कब से मैं बैठा हूं, आप इस आसन में जो बैठ सके इसमें बैठे प्रयास करें, जो बैठ सके, भाई बहन सब बैठ सकते हैं, हमारी दादियां भी बैठती थी पांव पे पांव, बहुत अच्छा है। इस पर बैठने के बाद इतना तो अवश्य है कि जब इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपको निद्रा मुक्त होने में बहुत मदद मिलेगी। और सामने अपनी ग्रीवा सीधा रखें, गर्दन सीधा, सामने देखें, सामने बाबा को देखें और कुछ देर तक अपनी दृष्टि को निर्निमेश एक तक अपलट, जैसे बाबा को निहारे, प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है। बाबा को सामने देखें और ये उपक्रम अगर आपने प्रारंभ के 5 मिनट तक कर लिया बिना पलक झपकाए तो आप देखेंगे आपको स्वस्थ रहने में, सजग रहने में। और आज जो बाबा ने कहा स्लोगन में कहा कि समय के महत्व को जान करके, और उसमें बताया जो बाबा की आंखें हमारी खुली रहनी चाहिए, आलस्य पुरुषार्थ का जो आलस्य है, सूक्ष्म आलस्य अलबेलापन जिसको कहते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये अभ्यास जरूर करें और अलर्ट होकर के, कभी जरूरी नहीं है कि आप बैठे बैठे नींद करते रहें, झुटका खाने वाला, ऐसी ठगी वाला योग नहीं। योग होना चाहिए जो बाबा से मुलाकात हो, बाबा की याद में मगन हो जाए और ऊपर बाबा भी देखे तो कहे कि वाह कितना अच्छा लगन में मगन है, वो भी प्रसन्न हो जाए। योगी की मुद्रा तो ऐसी होनी चाहिए कि वो पास में कोई सोता हो तो वो भी जग जाए, ऐसा नहीं कि उसके सोने का असर हमारे ऊपर हो जाए। हम सब यहाँ बैठते हैं, रोज सवेरे बैठते हैं और जो लगन में मगन होते हैं, और मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि आज जो कुछ भी मुझे मिला है वो अमृत वेले का वरदान मिला है, जिसके कारण मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और यही शुभकामना करता हूँ कि आप भी इस कला में पारंगत होंगे, अमृत वेले यानी ब्रह्म मुहूर्त को सफल कर आप ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। कर सकते हैं ना सभी? सभी कर सकते हैं तो एक बार अभिनंदन करें तालियों के साथ, बहुत बड़ा संकल्प है। तीसरा संकल्प है ब्रह्म ज्ञान का श्रवण, जिसको ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, यही ब्रह्मा ज्ञान है। प्रतिदिन हम सबको मुरली मिलती है, मुरली में मगन होकर के हम अपने दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं, पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने तो ये अनुभव किया है कि ईश्वरीय जीवन में जिन्होंने अमृत वेले को साध लिया है और जिन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों को बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी रुचिकर ढंग से, बड़े ही इंटरेस्ट से जिन्होंने भी बाबा की मुरली को महत्व दिया है, तवज्जो दिया है, बार बार ईश्वरीय महावाक्यों का पठन पाठन, श्रवण श्रावण करना, अवगाहन अवलोकन और उसका अवगमन करना और अपने जीवन में अवधारण करना, जिन्होंने इस बात को महत्व दिया है, मैं समझता हूँ वो निर्विघ्न तो क्या, वो अकाल मृत्यु से भी बच जाएंगे। उनके कहीं पर कोई एक्सीडेंट होने वाली भी होगी तो एक्सीडेंट भी नहीं होगी। जिन्होंने अमृत वेले को सफल कर लिया और जो बाबा की मुरली को बड़ी रुचि से सुनते और सुनाते और मगन रहते हैं, ये दो हथियार हमारे ईश्वरीय जीवन के सबसे बड़े हथियार है। तो तीसरी बात है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान, इसका पूरा भलीभांत अध्ययन करना, मगन हो जाना। चौथा है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन ये ईश्वरीय जीवन का प्रमुख अंग है, ये सबके जीवन का है, लेकिन हम सब भाग्यवान हैं कि हम सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है। हम जो ग्रहण करते हैं भोजन, जो बनाते हैं, परमात्म स्मृति में बनाते हैं, परमात्म स्मृति में पवित्र धन का प्रयोग करते हैं, तो ये ब्रह्मा भोजन, ये दुख भंजन भोजन बन जाता है, ये काल जयी भोजन बन जाता है, ये दुख निवारक भोजन बन जाता है। और ये समझिए कि ब्रह्मा भोजन तो वो भोजन है जिसको देवता और फरिश्ते भी तरसते हैं, और वो ब्रह्मा भोजन हमें मिलता है। मधुवन में आने के बाद तो आप समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि निरंतर हम सबको बाहर का कुछ ध्यान में भी नहीं आता है। आज भी इस क्लास में जो भी बैठे हैं, जो सुनते हैं, वो भी इस बात को ध्यान से समझ ले कि जब तक हमारे भोजन की शुद्धि नहीं है, जब तक हम भोजन को ब्रह्मा भोजन नहीं बना लेते हैं, तब तक जो रक्त वीर है, जो सहस्र बाहु जो अंदर बैठा हुआ है, जो अंदर में कीटाणु जो बैठे हैं माया के, ये कीटाणुओं का इनका परिवर्तन होना संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा भोजन की शुद्धि बहुत ही अनिवार्य है। जितने हम शुद्धि करते जाए, जितने भी बाहर की कोई भी चीजें हैं उनसे अपने आप को मुक्त करें, जितना भी हम खाते हैं भोजन करते हैं उसमें सात्विकता आती जाए, परमात्म स्मृति बढ़ती जाए, बाबा को बुलाकर भोजन बनाएं, तब भी याद में भोजन बनाएं और खाएं, तो वो भोजन ब्रह्मा भोजन हम सबके लिए सबसे उपहार, बहुत बड़ा उपहार मिल जाएगा। इसलिए ध्यान दें, जो भी नए भाई बहने आए हैं और जो भी पुराने हैं, इसमें जरा भी कहीं ढील देने की जरूरत नहीं है। बड़ा विशाल विषय है इस संबंध में, तो जितना भी आप सूक्ष्म में जाएं, जितना भी भोजन की शुद्धि पर ध्यान दें, उतना ही बहुत अच्छा होगा। और आजकल समय में तो और भी ढेर सारे डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। अपने को जितना आप शरीर को ब्रह्मा भोजन देना है, कितना देना है, कैसे देना है, और भोजन ग्रहण करते समय कैसे बाबा को याद करना है, जितना योगयुक्त होकर के भोजन ग्रहण करेंगे, ये दुख भंजन भोजन ये आपके निरंतर योगयुक्त रहने का और विश्व सेवा का बहुत बड़ा आधार है। आज से ये भी संकल्प लें ब्रह्मा भोजन का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? ब्रह्मा भोजन के बाद ब्रह्म लोक का विचरण करना। ब्रह्म लोक का विचरण करना, इसका मतलब है परम धाम की यात्रा करना, अशरीरी बनना, अव्यक्त बनना, वतन में जाना, इसकी यात्रा करना। इसके लिए समय निकालें, जब भी याद में बैठे। बाबा ने कई बार कहा कि जब आप याद में बैठते हैं तो दोनों स्थितियां होनी चाहिए, इस शरीर के भान से हम अलग हों, आत्मचिंतन के, आत्ममंथन के, आत्मदर्शन की गहराई में जाएं, स्वयं को शरीर से अलग करें। बड़ा सहज मैं आपको एक दो पॉइंट सुना रहा हूं, बहुत उपयोगी है, आप उसको जीवन में जरूर लाइएगा। और वो है कि स्वराज्य अधिकारी बनना, कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, करे मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। अपना हाथ सिर पर रखें, दाहिना हाथ, और फील करें, आंखों को कम करें, जैसे बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गए हैं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। निश्चय करें, मैं इसको बने मनोविनोद ढंग से, कभी देखता हूं कि मैं राजन बनकर के राज्य कर रहा हूं, और कभी इंद्रियों की चलाए मानी हुई तो खुद ही चिंतन करता हूं कि मैं अब राजा हूं। अभी तक तो राजतंत्र था, ये देखते देखते प्रजातंत्र कब हो गया, कभी तो राज दरबार लगाता रहा, आज तो पार्लियामेंट में जैसे बैठे हो, वहां पर मन जो है प्रधानमंत्री बन जाता है, सिर जो है शिक्षा मंत्री बन जाता है, और आत्मा राष्ट्रपति बन जाती है निमित्त मात्र ऊपर, और हमारी कर्मेंद्रियां अपना काम करती हैं, एक ठक ठक होता है, इधर होता है, उधर होता है, हैं? ये नाक जो है जांच प्रदूषण मंत्रालय यहां आ जाता है, मुख जो है खाद्य मंत्री बन जाता है, दांत जो है उद्योग मंत्रालय यहां आ जाता है, हार्ट होम मिनिस्ट्री यहां आ जाता है, ये रोजगार मिनिस्ट्री बन जाती है, चमड़ी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री बन जाती है, पेट परिवार कल्याण मंत्रालय यहां आ जाता है, टांगे जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बन जाती है, पूरा यहां पर ही डेमोक्रेसी हो जाती है। तो इस तरह भी मनोविनोद ढंग से भी पार्लियामेंट देखता हूं कि यहां खटखट यहां बोल रहा है, यहां बोल रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, माइक उठा करके वहां पर वो कर रहे हैं, तो कभी कभी ये भी देखता हूं। तो इस प्रकार से भी इस आत्मचिंतन की प्रयोगशाला में, आत्मपरिवर्तन की प्रयोगशाला में और याद की प्रयोगशाला में ये पहला आधार होता है, जब मैं शरीर में रहकर शरीर से अलग, यहां बैठ करके यहां से उतरे, शरीर में उतर रहा हूं मैं आत्मा, शरीर खड़ा है, नीचे आए और नीचे आए, पांव के अंगूठे तक जाएं, फिर ऊपर आए, फिर धीरे धीरे ऊपर आए, फिर ऊपर आए और ऊपर आए, फिर यहां बैठ जाएं, फिर चले दूसरे पांव में नीचे तक जाएं, फिर ऊपर आए, इस शरीर के अंतर यात्रा, इस शरीर की भी अंतर यात्रा करें, इसमें अंतर यात्रा करें, बहुत अच्छा लगेगा। शरीर से बाहर आ जाएं, यहां छत तक जाएं, ऊपर से देखें, यहां मेरा सिर है, ये सब कुछ है, माइक लगा है, ये हॉल है, ऊपर देखें, फिर आए शरीर में प्रवेश करें, फिर आंखें खोलें, फिर जाएं बाहर जाएं, फिर आए अंदर आए, ये अभ्यास करें। एक अभ्यास ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैं परमधाम में पहुंच चुका हूं, एक लिफ्ट आई और वो लिफ्ट पूरी धरती को लेकर के नीचे जा रही है, और मैं यहीं पर अब परमधाम का अनुभव कर रहा हूं। परमधाम है और नीचे कहीं धरती है, कहीं प्लेनेट है धरती, उसमें कहीं ग्लोब में कहीं भारत है, भारत में राजस्थान, और वहां कहीं शांतिवन है आबू। ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूं, अब ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, अब सबको नीचे भेज दो और आप ऊपर में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास के छोटे छोटे अनुभव बड़े काम के हैं, ऐसे ऐसे अभ्यास करें। फिर वतन में जाना, वतन में बाबा के साथ बैठना जिसे बाबा स्वागत कर रहे हो, वहां का अनुभव करना जिसे बाबा बुला रहे हैं, बच्चे वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तो मेरे पास आओ, वो अनुभूतियां करना, वहां पर रहना। और फिर परमधाम में जाना बाबा की किरणों के नीचे, ऐसे हाथ करें सब कोई, ऐसे हाथ करें, कुछ पल के लिए अनुभव करें कि हम जब से आए आपकी इन किरणों के नीचे ज्यों आ गए हैं, शीतल शीतल झरनों के नीचे, ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है, ओ बाबा आपके प्रेम ने घेरा है, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में हम तो समाए हैं, देह दुनिया जाने कब का सब कुछ भुलाए हैं, ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, फिर बाबा को लेकर नीचे आ जाए, कभी कभी मन करे तो साकारी याद में पल जाए, आ जाए मधुबन में पहुंच जाए, शांति वन में आ जाए, घर पे बैठे और यहां हॉल में देखे और वो दृश्य देखें कि जैसे कि नौर ये नया वर्ष है, बाबा यहां पर हैं, बाबा उठ रहे हैं दादियों के साथ, वो घंटी भी बज रही, घंटा बज रहे हैं, बाबा नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, नवयुग का वो भी पल देख ले कि जब बाबा पूरे हॉल का चक्कर लगाते रहे हैं, आप बीच में जहां बैठे वहीं फील करें कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा की दृष्टि ले रहा हूं, भगवान को चलते हुए देख रहा हूं, आहा धन्य भाग्य हमारे, इन आंखों से ही देख रहा हूं भगवान को चलते हुए, कितना बड़ा भाग्य, पूरे हॉल का बाबा आधा घंटे में जो चक्कर लगाते हैं, ऐसे फील करें कि बाबा आज भी हमारे सामने मेरे साथ में, ये बैठ जाए, ये सहज योग है, ये साकारी याद भी बहुत है, मधुबन पहुंच जाए पांडव भवन में, वहां पर कुटिया की यात्रा करें, कमरे की यात्रा करें, हिस्ट्री हॉल में चले जाएं, वहां शांति स्तंभ पर चले जाएं, ओम शांति भवन, ये सब याद करने की तमाम युक्तियां इतनी सहज दी है बाबा ने कि केवल आपके स्विच ऑन होना चाहिए और अनुभूतियों के वो पल आपके साथ में और उस याद में मगन हो जाए। तो कभी साकारी याद, कभी आकारी याद, कभी निराकारी याद, इतने ढेर सारे खजाने दिए हैं। कम से कम जो भाई बहने आज सुन रहे हैं, वह आज से शिकायत करना, ये कहना बंद कर दें कि मेरा तो योग ही नहीं लगता, या मेरे तो व्यर्थ संकल्प ही चलते रहते हैं, योग कैसे लगाऊं, कब टाइम मिले तो इनके पास जाऊं, उनके पास जाऊं पूछूं, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। जो भाई बहने नए नए भाई बहने हैं, वो बाबा की जीवन कहानी ही पढ़ लें, किताब पढ़ लें, हमारी आदरणीय दादियों की जीवन के अनुभव सुन लें। जब तक यज्ञ के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक परमात्मा प्रेम इस तरह आगे नहीं बढ़ता है, जब तक आप अपने इस यज्ञ को स्नेह में डूबकर स्वीकार नहीं कर लेते कि मैं भी इसी का हूं, मैं यहीं का था, मैं यहीं का हूं, तब तक वो रस नहीं मिलता है। इसीलिए आजकल योग तो लगाते हैं, मनसा सेवा करते हैं, बहुत दूर दूर तक तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मशीन बनने से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा हो कि अपने जीवन के लिए अभ्यास कर लें, स्नेही मूर्त बन जाए, है स्नेह जगत में सार और कुछ सार नहीं। जितने प्रेम से आप बाबा को याद करेंगे, जितना प्रेम अपने आप को करेंगे, जितना प्रेम आप ब्राह्मण परिवार ईश्वरीय परिवार के एक एक भाई बहन को प्यार करेंगे, जितना प्रकृति को प्यार करेंगे, उतना ही आप प्यार से भरे रहेंगे। तो आइए हम सब स्नेही मूर्त बन जाए, दूसरा शक्तिशाली बने, तीसरा समय का सदुपयोग करें, चौथा स्वास्थ्य की भी संभाल करें, पांचवा शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दें, ड्रामा में साक्षी हो जाएं, और अंतिम बात बाबा को अपना साथी बना ले, निस्संदेह आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की क्लास से सतीश भाई की 7 बातें नोट कर लें, बहुत अच्छे जो प्राय मैं क्लास में बताता हूं, रोज दिनचर्या में रोज सवेरे उठे, उठते ही बाबा को बड़े प्रेम से नमस्ते कर लें, सुबह सुबह उठो कहते कहते ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। पहली दृष्टि में पहला प्यार बाबा के प्यार में इतना डूब जाए कि किसी व्यक्ति का इंसानों के प्यार की कोई आवश्यकता न रहे। दूसरा स्वमान ले ले कि मैं शिव शक्ति हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या मैं अवतार हूं, आज का दिन मेरा एक नया जीवन है, मुझे बोनस मिला है, या मैं परमात्मा का दूत हूं, ईश्वर का संदेशी हूं, मेरा धरती पर अवतार हुआ है। भाव ये होना चाहिए कि अब मैं नीचे से ऊपर न जाऊं, रोज आपकी यात्रा अवतार लेकर के ही करना है। इस बात को पक्का कर ले, उठते ही बिस्तर से उतरते ही ऐसे संकल्प करें, ऐसे हाथ कर ले, ऐसे हाथ कर ले, ऐसे हाथ कर ले, वरदानी मुद्रा में आंखों को कम करें, अनुभव करें, मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए जरा तो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं प्रेम का अवतार हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं शांति का अवतार हूं, मैं शांति दूत हूं। निश्चय करें हाथ, अगर ये क्रम आपने सवेरे उठते ही 5 बार कर ले, और दिन भर में कम से कम लक्ष्य बनाए 5 बार करने का, ये आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि बहुत अच्छा आपका दिन बीतेगा। लौकिक बातें समाप्त, आपका दिनचर्या अलौकिक बन जाएगी। आप अवतार लेकर के यही लगेगा कि ऊपर से मैंने मास्क पहना है मम्मी पापा का, लेकिन अंदर से मैं फरिश्ता हूं और मुझे इस फरिश्ता बनाकर सबको लेकर जाना है। तीसरी बात अमृत वेला पक्का करेंगे, चौथी बात बाबा की मुरली को, पांचवी बात कर्म योग को। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ कर ले, अनुभव करें कि बाबा की किरणों के नीचे मैं बैठा हूं, बाबा से लाइट आ रही है, माइट आ रही है, बाबा मेरे सिर पर है, बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं हूं। ये अनुभव, ये अभ्यास नेचुरल चलते फिरते कुछ और हो ना हो, केवल यही कॉन्शियस में हो जाए कि मेरे सिर पर मेरे बाबा है, और यही अभ्यास अगर पक्का हो, चलते फिरते भोजन बनाते खाते, गाड़ी चलाते ऑफिस बैठे कुछ भी काम करते हुए अभ्यास यही अनुभव कि मेरे सिर पर मेरे बाबा है, और यही एक अभ्यास आपको अंत मते सागते बना देगा। बाबा किरणे और मैं आत्मा, बाबा किरणे मैं आत्मा, बाबा किरणे मैं आत्मा, एक ये सूक्ष्म अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा सुखदाई है, बड़ा सरल है। और पांचवी बात में एक और संकल्प कर ले, पांचों अभ्यास कर ले, पांचों स्वरूपों का मेरे साथ कर ले, जैसा मैं कहूं, मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। छठवीं बात, एकांत में बैठना, चिंतन करना, चार्ट लिखना, और अंतिम बात है दिल से सबका धन्यवाद कर देना, इसका धन्यवाद करना, इसका धन्यवाद कर दे, धन्यवाद मेरे शरीर, अंतिम जन्म के अंतिम साथी, बड़े काम के हो तुम, कहा कैसे आभार करूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसका करें। साथियों का धन्यवाद कर दें, प्रकृति का धन्यवाद कर दें, प्यारे बाबा दोनों हाथ ऊपर करके प्यारे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ऑप्शन